शांति। आज हमारे आदरणीय मोहन भाई जी, वैसे आपकी कॉन्फ्रेंस होने के कारण बहुत व्यस्त है, लेकिन आप सबसे मिलने का आकर्षण भी विरोक नहीं पाए हैं, और इसीलिए हमने कहा भाई साहब रात्रि क्लास संभव होगा, और उन्होंने बहुत रेडीली एक्सेप्ट किया है। आज हम विशेष आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, और इतनी व्यस्तताओं के बीच से समय निकाला है, इसलिए हम आपके आभारी भी हैं। आदरणीय मोहन भाई जी से मोस्टली सब परिचित होंगे ही, मामा बाबा की पालना में पले हुए विशेष रतन हैं। हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में जब से विंग को संभाला है, विंग को नए आयाम मिले हैं। पर्यावरण के कार्य में आपने उस क्षेत्र में इतने अधिक कार्य किए हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण श्री जैसे कई अवार्ड्स आपको अलग अलग देशों अलग अलग स्थानों से मिले हुए हैं। बाबा का एक एक रतन अपनी अपनी विशेषताओं में संपन्न रहा है, और एक एक को निमित्त बना करके बाबा अपने यज्ञ का कार्य किस प्रकार से करा रहे हैं, और भाई साहब ने जिस भी क्षेत्र को संभाला उस पर पूरा ध्यान देकर के किस तरह बाबा की सेवाओं को एक ऊंचाई दी है, हम सबके लिए ये सारी ही बातें अनुकरणीय है। आज भाई साहब हमें अपने इतने वर्षों के बेहद खजानों के भरे इस ट्रेजर से या बेहद खजानों से हमें अपने कुछ अमूल्य रत्न देंगे, ताकि आज सारा दिन हमने इस बात को विशेष अंडरलाइन किया है कि तपस्या के लिए त्याग और वैराग्य दो चीजें आवश्यक है, लेकिन साथ साथ हमारे भविष्य का खाता जमा करना भी इतना ही हमारे लिए जरूरी है। तो आज भाई साहब से हम सुनेंगे कि हम हमारे कदम कदम पर सारे व्यवहार सब कुछ संभालते निभाते भी हम कदम कदम पर अपना जमा का खाता कैसे बढ़ाते चले। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। मिलकर हृदय की गहराइयों से इस ओम शांति की ध्वनि को निकालेंगे। जैसा कि हम सब ने सुना है, यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण वत्स मिलकर के किया करते थे इस ध्वनि को। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ओ ओम शांति का महामंत्री है जिसकी यथार्थ धारणा से हमारे सब खजाने जमा होते रहते हैं। बाप दादा ने अनेक बार बताए हैं कितने खजाने हैं, सबकी बुद्धि में ही हैं। आप सब ब्राह्मण वत्सों के बाबा के पुराने बच्चे हैं। कौन कौन से खजाने हैं? बहुत सारे हैं। संकल्पों का, समय का खजाना, खुशी का खजाना, और बाबा ने अनेक जो बताया है ना, वाणी का भी है, कर्मों का, शक्तियों का, गुणों का, ये सब खजाने हैं। और आज हम सब लोग थोड़ा सा इसको विचार करते हुए कि कैसे इन खजानों को जमा करते चले। जमा तो कर ही रहे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। इतने वर्षों से, अलग अलग वर्षों से जमा किए हैं खजानों को, इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो जमा कर भी रहे हैं और उन खजानों को बांट भी रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, हम सब प्रवृत्ति में रहते हैं कि खजाने जमा भी करते हैं लेकिन साथ साथ कुछ लीकेज भी हो जाता है। न चाहते भी खजाने काफी वेस्ट हो जाते हैं। तो एक तो ये देखेंगे कैसे खजाने जमा करें, और साथ साथ जिस भूमि पर बैठे हैं, विश्व की सर्वोत्तम भूमि है, भगवान की कर्म भूमि रही है, तो यहाँ पर हमें ये भी सौभाग्य मिला है, जैसा बहन जी बता रहे थे, बाबा के साथ साथ लगभग 6-7 वर्ष रहने का। और तो बाबा को जो इतना क्लोज से देखने का मौका मिला, और साथ साथ एक और सौभाग्य मिला कि जब बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था थी, कौन सी तारीख को, 18 जनवरी 1969, तो उन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 को हम यहाँ पर आ गए थे और दो दिन बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था को देखने का बहुत क्लोज से मौका भी मिला। तो उस परिपेक्ष में कैसे ब्रह्मा बाबा अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते करते फरिश्ता स्वरूप धारण कर लिया, उस पर भी हम सब लोग कुछ ऐसा विचार विमर्श करते हुए, बाबा ही हमारा रोल मॉडल है। अब बाबा भी तो देखो, साधारण व्यक्ति से और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पा लिया। बाबा भी बताते हैं, साधारण देखो मैं गृहस्थी था, परिवार वाला था, अदर कुमार, उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ, लेकिन बाबा कितने कम समय में कर्मातीत बन गए। कितने समय में? सिर्फ 33 वर्षों में ही कर्मातीत बन गए। और यहाँ हो सकता है अनेक बैठे हों, औरों का तो मालूम नहीं, मुझे ही 50 वर्ष से अधिक हो गए, और भी बहुत हैं जो 33 वर्ष से, जिनको भी अधिक हुआ होगा, लेकिन हम सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसी और क्या बात थी कि ब्रह्मा बाबा उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए और घर गृहस्थी में रहे हुए भी 33 वर्षों में कर्मातीत बन गए और हम सबको उससे ज्यादा समय लग रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम सब देखते चलेंगे। तो खजाने जमा तो कर ही रहे हैं हम सब बच्चे, लेकिन उन खजानों को बीच बीच में थोड़ा ऑडिट करना भी जरूरी होता है। जैसे कोई भी बात होती है, आप सब भी बहने वगैरह जो समर्पित हैं जानते हैं, सेंटरों के भी हर वर्ष ऑडिट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के भी अकाउंट्स जमा होते हैं ऑडिट। तो इसीलिए हमें भी अपना ऑडिट करना, अपने अंतरात्मा में झांकना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसे भर करके हम संपूर्णता की तरफ बढ़ते चले। तो खजानों को भरने का और क्या क्या विधि है, मुख्य बाबा ने वैसे बातें तो बहुत बताई हैं, लेकिन कुछ 7-8 बातें ऐसी हैं जिनको कि हम चेक करते चले तो खजाने लीक होने का चांसेस नहीं रहे और हम जमा भी करते चले और साथ साथ संपूर्णता की तरफ कदम बढ़ाते चले। तो इसके लिए एक सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आंतरिक महसूसता की, इंटरनल रियलाइजेशन। हम सब ज्ञान में तो चल ही रहे हैं और समझते हैं बहुत ठीक है, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, धारणाएं हैं जीवन में, लेकिन वर्तमान समय के परिपेक्ष में ये जरूरी है कि वो महसूसता की शक्ति हो। कुछ दिन पहले बाबा ने गुलजार दादी के थ्रू एक बच्चों को सर्टिफिकेट दिया। कौन सा सर्टिफिकेट? बाबा ने कहा, बाबा एक बात का तो सर्टिफिकेट बच्चों को देता है कि बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, अभी भी चलते हैं। तो विकारों से, मोटे मोटे विकारों से तो बच्चे उठ गए हैं, उसका सर्टिफिकेट बाबा देते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और इस कारण से वर्तमान समय जो चल रहा है वो बहुत सूक्ष्म संकल्प चल रहा है, इसने संकल्पों से भी बहुत खजानों की जैसे लीकेज हो जाती है। क्योंकि संकल्प कोई चीज के बहुत समय तक चलेंगे तो कभी वाणी में भी आ जाते हैं, कभी हो सकता है कर्म में भी आ जाए वो संकल्प। तो इसलिए बच्चों को पहली आवश्यकता एक है रियलाइजेशन की, और रियलाइजेशन कौन सी? महसूसता कि ये जो महसूसता अंदर की हो, दिल की महसूसता हो, दिखावे की महसूसता नहीं। एक होती है दिखावे की, नॉर्मल केस में कोई बात हो गई, गलत हो गई, हम सॉरी मुंह से निकल ही जाता है और बस फिर हम जैसे ही चलते रहते हैं उसके अर्थ में टिक करके, हम ये संकल्प नहीं लेते कि ये कमी या कमजोरी या कोई बात हुई ये दोबारा न हो। तो वो हो गई दिखावे की, लेकिन दिखावे की जो महसूसता है उससे क्या होता है, हम अपने विवेक का खून कर लेते हैं। बुद्धि में है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बुद्धि में होते हुए भी ना हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जीवन में ला नहीं पाते हैं। तो उससे क्या है, बहुत खजाने हमारे लीक हो जाते हैं। और इसलिए आवश्यकता ये है एक तो कि दिखावे की नहीं बल्कि दिल की महसूसता हो। और बाबा ने कहा है एक बार अगर दिल की महसूसता हो जाती है तो क्या होता है, दिलाराम की, बाबा की आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है। तो पहले तो इस पावन भूमि पर बैठ के हम इस बात को वो करें कि बाबा कभी भी कोई भी अगर बात हो, कमी हो, कमजोरी हो, उसकी मुझे अंदर से दिल से रियलाइजेशन हो। और जब रियलाइजेशन दिल से हो जाती है तो फिर क्या होता है, महसूसता हो जाती है, तो फिर जीवन में परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। हम सभी चाहते हैं परिवर्तन हो, भाई पुरुषार्थ तेज हो, याद की यात्रा का चार्ट बढ़े। बाबा ने 8 घंटा तो बोला है, लेकिन 8 के अभी तक अगर हम सही दिल से अगर लिखें तो 4 घंटे 3 घंटे भी मुश्किल से हो पाता है, नहीं हो पाता। तो इस कारण से अभी आवश्यकता यह है कि महसूसता के साथ परिवर्तन की शक्ति हमारे अंदर हो, तो खजानों के लिए परिवर्तन की शक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है, ये परिवर्तन हो हमें, कि वो परिवर्तन अंदर का हो। और परिवर्तन जब होता है तो सबसे सूक्ष्म चीज कौन सी है, अंदर जो जहां से परिवर्तन शुरू होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है स्मृति और वृत्ति। संकल्प से भी ये सूक्ष्म है। संकल्प तो होते हैं तो हमें पता चलता है ये संकल्प है, ये क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, कभी मन नचित लेकिन फिर भी ये विचार क्यों आ गया, क्यों वो आ गया, क्योंकि वो विचार वृत्ति के अंदर सेट हुआ है। वृत्ति क्या चीज है, वृत्ति क्या चीज है, आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसका नाम वृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। और ये अनेक जन्मों की वृत्तियों का जो है एक्यूमुलेशन है, वो अंदर जो है इस जो भी संकल्प है, कोई बात होती है तो वो हमारे ज्यादातर इस जन्म से संबंधित होते हैं। लेकिन वृत्ति अगर है तो द्वापर युग से जो भी हमारी अपवित्र वृत्तियां शुरू हुई हैं उन सब वृत्तियों का एक्यूमुलेशन है। इसीलिए कभी भी कोई वृत्ति एकदम सडनली जागृत हो जाती है, और वो वृत्ति जागृत हो जाती है तो कई बार वो वृत्ति के वशीभूत होके वो स्मृति दृष्टि कृति प्रवृत्ति सब वैसी हो जाती है और वो ही लीकेज का कारण बन जाते हैं। तो जैसे कहते हैं लोहे को लोहे से काटना पड़ता है, वो उससे ही कटता है, ऐसे ये जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति शुद्ध पवित्र वृत्ति से ही कटेगी। और वो वृत्ति को हम कैसे डेवलप करें, 2-3 दिन पहले ही बाबा का शायद मुरली के अंदर वो था, वृत्ति के ऊपर अंतर्मुखता के ऊपर बात हो रही थी। तो वृत्ति भी जैसे 2 प्रकार की होती है, एक है अंतर्मुखी वृत्ति, एक है बाह्य मुखी। कैसे हमें डिमार्केशन पता चले, फर्क पता चले अंतर्मुखी वृत्ति क्या है। मोटे तौर पर तो भाई बाहर की बात है, अंदर की बात वो हम कह देंगे, लेकिन अंतर्मुखी वृत्ति जो है वो वायुमंडल को बनाती है, और बाहर मुखी वृत्ति जो है वो वायुमंडल से प्रभावित होती है। जो वायुमंडल जैसा है वो अगर मेरे पर प्रभाव डाल रहा है, इसका मतलब मेरी वृत्ति बाहर मुखी है। और अक्सर होता है जब कहीं शमशान भूमि में जाओ तो वैराग्य की वृत्ति आ जाती है, यानी वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। यहां पर आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, वायुमंडल का प्रभाव, इसका मतलब अभी तक मेरी वो वृत्ति बाह्य वृत्ति थी, बाह्य मुखी, तभी वायुमंडल के प्रभाव में यहां पर मेरी वृत्ति भी शुद्ध होती जा रही है, क्योंकि यहां का वायुमंडल शक्तिशाली है, पवित्र है। तो उस वायुमंडल से हम अभी ऐसी वृत्ति बना करके जाए कि वो वृत्ति हमारी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तित कर सके। तो इसके आधार पर ना हम देखते चलते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या बातें हैं जिनसे हम खजाने जमा कर सकते हैं और खजानों की लीकेज ना हो, क्योंकि परिवर्तन हम सब चाहते हैं। इवन महाभारत काल से पढ़ा करते थे भाई कि दुर्योधन था, वो जानता था, कहता था मैं जानता हूं कि सत्य क्या है लेकिन उसका पालन नहीं कर सकता, मैं जानता हूं असत्य क्या है गलत क्या है लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकता। यानी कि आज वही है, आज इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है, चारों तरफ सब इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, यहां तक कि मोटे तौर पर सिगरेट की डब्बी पर भी लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान खतरनाक है, जानते हैं फिर भी कमजोरियों के वशीभूत उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अभी हम ये देखें कि कैसे हम अपनी अंदर की वृत्ति को इतनी स्ट्रांग करें, और इसका आधार तो है जैसे स्मृति, जैसी कहा जाता है इसलिए जैसे स्मृति होगी ना वैसी ही वृत्ति उसके आधार पर चलती रहती है। तो ये तो एक पूरी चेन है, स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति प्रवृत्ति और सृष्टि, सृष्टि तक संसार तक बदल जाता है। हम मोटे तौर पर तो कहते हैं हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम तो बदले हैं काफी हद तक, तभी तो यहां बैठे हैं, लेकिन क्या जग बदला है? जग नहीं बदला, इसका मतलब हम भी नहीं बदले, क्योंकि हम अगर पूरे बदले होते तो जग भी बदल जाता। तो इसलिए अब इसके लिए हम करें क्या कि जो खजाने लीक होते हैं, पूरा परिवर्तन हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, वो क्यों? उसका मुख्य बात एक, उसको लिए एक पहली आवश्यकता है जो अमृत वेले का योग। तो अमृत वेले जब योग करते हैं, सम सब करते हैं, यहां भी करते हैं, लेकिन दो काम उस समय जरूर करें। एक है हम दिनचर्या तो अपनी बनाते हैं, तो एक है जैसे शरीर की दिनचर्या बनाते हैं वो दिनचर्या, और दूसरी मन की दिनचर्या, ये बनानी बहुत आवश्यक है। शरीर की दिनचर्या के तो हम आदि हैं, आज ये काम करना है, ये सेवा करनी है, ऐसा करना है, लेकिन मन की दिनचर्या वो साथ साथ जरूर बनाए। आज मुझे इतने से इतना समय, आधा घंटा 40 मिनट इस संकल्प में रहना है, आज मुझे इस संकल्प के साथ साथ इस स्वमान में रहना है, इस स्थिति में रहना है, वो जितना जितना हम मन की दिनचर्या, और उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें जो बाबा हमेशा कहते हैं, कौन सा खजाने बढ़ाने की युक्ति क्या है? बाबा बड़ा सहज भाव, खजाने बढ़ाने की युक्ति क्या है? बांटना। और लौकिक दुनिया में भी खजाना बढ़ता है एक बिंदी लगाते चलो, बस एक के आगे बिंदी लगाई 10 गुना हो गया, 10 के आगे एक बिंदी लगाई 100 गुना हो गया। तो खजाना बढ़ाने की युक्ति है ये बिंदी लगाते चलो। किस किस चीज में बिंदी लगानी है बाबा ने बताया है, कौन सी 3 बिंदियां है विशेष जो बाबा बोलता है? ड्रामा, आत्मा परमात्मा ड्रामा। तो ये बिंदी जो है ना, जो भी परिस्थिति आए जैसा आए उसे हम स्टॉप, बस बिंदी लगा के चलते चले। इससे क्या होगा, बिंदी लगाने से समय रूपी खजाना भी ना वो बहुत बचत होगा। समय जो है उसको क्यों खजाना कहा गया है? समय कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वैल्यूएबल। हाँ, आज 30 तारीख हो गई, कोई कल को इसी कल्प में 25 तारीख आ सकती है, 2018 नहीं आएगी। तो जो बीत गया सो बीत गया जो कहते हैं ना, तो इस कारण से एक है कि ये बिंदी लगाते चले और ये बिंदी से क्या होगा, समय रूपी खजाने की भी बहुत बचत होगी और समय और संकल्प तो एक दूसरे से बहुत बहुत कनेक्टेड भी है। तो इसीलिए एक ये करते चले अमृत वेले, मन की दिनचर्या भी पूरा बनाए और तन की दिनचर्या तो बनाने के हम सब आदि है ही हैं। तो एक जो खजाना बचाने की युक्ति है, लीकेज बचाने की, वो ये है। दूसरा युक्ति और क्या है, बाबा ने कहा कि कुछ जो भी मुरली हम सुनते हैं तो कोई ना कोई एक या दो पॉइंट उसे हम विचार सागर मंथन जरूर जरूर करें, क्योंकि मंथन विचार सागर मंथन जब होता है तो वो खजाना हमारा अपना बन जाता है। विचार सागर मंथन क्या युक्ति है, कहना तो बड़ा आसान है लेकिन जब भी कोई मंथन करने बैठते हैं तो क्या होता है, बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, मंथन नहीं चलता। तो बाबा ने मंथन शुरू करने की युक्ति बहुत अच्छी बताई है। कौन सी युक्ति है? कई बार बाबा कहते हैं हम ब्राह्मणों के हर एक के घर में चित्र तो होते ही हैं, हो सकता है कईयों के यहाँ इतने ओपनली चित्र ना हो जो बांधे लिया हो या कुछ, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मणों के घर में मुख्य मुख्य चित्र तो होते हैं। तो बाबा कहता है चित्र के सामने जाके बैठ जाओ और चित्र को देखो और ऐसे अपने से बातें करो जैसे हम किसी दूसरे को समझा रहे हैं। मानो कल्प वृक्ष के सामने जाके बैठ गए, तो कल्प वृक्ष के सामने देखो, भाई वाह, मैं तो कल्प वृक्ष का आधार मुझके मेरे ऊपर है, मैं जड़ हूं पूरे सृष्टि की और जड़ में देख रहे हैं हम बाबा मामा और अष्टरतन भी बैठे हुए हैं, और हमने तो कई जगह देखा सदा बाबा कहते हैं ना युक्ति रचो अपने लिए, तो बहुत भाई बहन ये भी करते हैं नशा चढ़ाने के लिए अपना पिक्चर भी काट के लगा देते हैं साथ में, अरे मैं भी अष्टरतन हूं, कम क्यों समझे, बाबा ने कहा है ना, हाँ सदा ये समझो मैं महान आत्मा हूं, मैं सृष्टि की आधार मूरत हूं, मैं विजयी रतन हूं। बाबा कल्प पहले भी आपने विजयी बनाया था, अभी भी विजयी बना रहे हो माला का मणका, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। और अपने को देखते, क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हमारा स्वरूप बन जाता है। तो इसीलिए यही मैं विजयी आत्मा हूं, तो उससे प्रैक्टिकल भी फायदा ये होगा कि कोई भी चित्रण होता है अगर आंख के सामने वो धीरे धीरे स्थायी हो जाता है, और जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई कमजोरी का क्षण आया, कोई ऐसी बात आई माया की जहां कमजोरी की बात हो, तो तुरंत हमारे माइंड में वो घूम जाएगा अपना चित्रण जो बाबा कहता है, फिर वो बात नहीं होगी। बाबा ने भी कई बार कहा है कि बच्चों के ना हर बच्चे की टीवी मेरे सामने है, और जब कभी कोई बच्चे में कोई कमजोरी आती है उसका वो टीवी का स्विच ऑन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब बाबा को पता चल जाता है कि फलाना बच्चा इस समय थोड़ा बुद्धि मतलब मन और बुद्धि कमजोरी की स्थिति से पास हो रहा है, तो बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है। अगर उसका बुद्धि का थोड़ा सा भी जो कनेक्शन बाबा के साथ होगा वो उसे पकड़ लेता है और वो संकल्प कमजोरी का उसका संकल्प तक ही रह जाता है और उससे खत्म हो जाता है, फिर वो वाणी और कर्म में नहीं आता। बाबा तो टच करता है लेकिन रिसीवर सेट भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, एंटेना है, ट्रांसमीटर बहुत स्ट्रांग है टीवी का रेडियो का कोई भी, लेकिन हमारा रेडियो सेट या टीवी सेट ही खराब है, वो रिसीव अगर नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कुछ आएगा नहीं। इसीलिए बाबा तो देता है करता है, लेकिन मैं उस समय कितनी जागृत अवस्था में हूं। तो दूसरा है ये विचार सागर मंथन का। तीसरी स्थिति है वो ये इसे चित्रों के जैसे हम शुरू कर दें, बस जब भी हो घर में है कहीं भी है चित्र के सामने बैठ के अपने अंदर ही अंदर देखो मैं वृक्ष हूँ फिर ये तना हुआ फिर उसका विवरण मैं नहीं करता, आप सब पुराने हो जानते हो, प्रदर्शनियों में चित्र वगैरह समझाते हो। और क्या बाबा ने बताया, खजाना बढ़ाने की युक्ति है क्योंकि जितना मंथन करेंगे उतना संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त होती चलेगी। विजय ये आवश्यक है, जब भी खाली दिमाग जो होता है ना वो ही शैतान का घर होता है, तो दिमाग को खाली न रहने दे, बस कहीं चित्रों का कहीं किताबों का पुस्तक का साथ कहीं जैसा संग वैसा रंग है तो मोटी बात, लेकिन इसे व्यवहारिक रीति से प्रयोग में लाने का है। तीसरा ये अभ्यास जरूरी हो, मैं करण करावनहार हूं, मैं भी करावनहार, मैं इस कर्मेंद्री के द्वारा करा रहा हूं, जैसे होता है ना भाई मैं इस पेन के द्वारा लिख रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट है ये अलग है मैं अलग हूं, इसके द्वारा लिख रहा हूं, मैं इस चश्मे के थ्रू देख रहा हूं, तो वो स्थूल चीज होने के कारण वो तो बुद्धि में आ जाती है। इसी तरह बाबा कहता है ये अभ्यास बहुत बार बार करो, अंत समय ये ही अभ्यास काम आएगा, मैं करावनहार हूं। तो इसलिए ये एक अभ्यास और ये पक्का करते चले। साथ साथ हाँ, जब ये हमारी धीरे 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 ये वृत्ति और स्मृति थोड़ा स्ट्रांग होती जाएगी तो वृत्ति की परख किससे होती है, दृष्टि से होती है, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि भी कहते हैं ना, और दृष्टि अक्सर करके हम कह देते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आदि आदि, लेकिन दृष्टि का ये आंख ये दृष्टि जो है इसका महत्व तो नहीं है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, खिड़की है इस शरीर की, महत्व तो किसका है, देखने वालों का, दृष्टा का। इसीलिए कहा गया है साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टि नहीं, आत्मा दृष्टा है देखने वाली, और इस दृष्टि के थ्रू दृष्टि के द्वारा वो देखती है। तो ये बीच बीच में अभ्यास करते चलें, दूसरे की तरफ देखें बार बार बुद्धि, जैसे बाबा ने अभ्यास किया ये आत्मा है, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, अपने बच्चों से वो स्टार्ट किया, ऐसे ही जो हम प्रवृत्ति में रहते हैं उनसे हम स्टार्ट करें और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या जो कर्म क्षेत्र है हमारा कार्य क्षेत्र है, बस देख करके भ्रगुटी की तरफ ये आत्मा है, ये आत्मा है, बहुत आनंद आता है। और ये जितना आनंद आता है ना इधर, उतना अभ्यास पक्का होता चला जाता है। इसी अभ्यास के साथ ही आगे बढ़े। तो बात चल रही थी कि कैसे हम ये दृष्टि को, क्योंकि ये बहुत जो साक्षी दृष्टा बाबा कहता है मुरलियों में भी, तो ये हमारा पेपर बहुत टुवर्ड्स द एंड वाला पेपर है, क्योंकि अंत समय जब अति विकट परिस्थितियां होंगी उस समय इसका अभ्यास जितना ज्यादा होगा साक्षी दृष्टा का, उतना हम पास विद ऑनर्स हो जाएंगे। देख रहे हैं सामने कि हमारे नियर एंड डियर, हमारे एकदम ब्लड रिलेशन, उनका ये हो रहा है, शरीर छोड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अगर साक्षी स्थिति नहीं हुई ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाएगा, और उसका प्रभाव अगर आ गया तो फिर तो जो गायन है ना, कौन सा, अंतमते सोगति का गायन, अंतमते सोगति के गायन से प्रभाव आ गया तो वैसी अंतिम स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा में ये जो है, एक तो जो आत्मा दृष्टा है, दूसरा ये जो आंख है ये दृष्टि है, तीसरा जो इसके थ्रू देख रहे हैं वो बाहर के दृश्य है, स्पष्ट ऐसे ही डिफरेंस पता चले कि ये अलग है, ये दृश्य ट्रेन में जाते हैं या कहीं जाए दृश्य तेजी से बदलते जाते हैं, एक दृश्य आया चला गया, दूसरा, कहीं अटकते थोड़ी है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली इस दुनिया में व्यवहारिक उसमें कोई भी प्रसंग आ जाता है, कोई घटना हो जाती है, कोई बात होती है, दृश्य आया, वो अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चेतना नहीं है कि ये दृश्य है और मैं दृष्टा इस दृश्य के द्वारा ये दृष्टि दृश्य को देख रही हूं। ये तीन चीज हो गई, दृष्टि, दृष्टा और दृश्य। चौथी चीज है, इसका प्रभाव गहरा हमारे अंदर कब पड़ता है? जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है। हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो घटना एक ही होगी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा उसका प्रभाव मेरे पे पॉजिटिव पड़ेगा, दूसरे का अगर नेगेटिव दृष्टिकोण है उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव। ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उसे हम कैसा बनाते हैं। पांचवी चीज है, जैसा दृष्टिकोण होता है, प्रभाव होता है, वैसे ही फिर कर्म होता है। तो उसी के आधार पर ही फिर हमारा इतिहास दृष्टांत लिखा जाता है। द्वापर युग से हमारे जो अनेकानेक दृष्टांत शास्त्रों में लिखे गए, वो सबका आधार यही था कि हमने किस दृष्टिकोण से उस कोई भी बात को ग्रास्प किया, लिया और कैसा कर्म किया। तो इसीलिए ये इन पर आधारित रह के हमारा ये दृष्टिकोण कैसा होता है। तो वृत्ति से ये कृति तक की यात्रा है। वृत्ति अंदर की सूक्ष्म चीज है और स्मृति, वृत्ति और ये दृष्टि, ये तीनों चीजें सूक्ष्म है। अब बाकी जो तीन चीजें हैं, कृति, कर्म, प्रवृत्ति और सृष्टि, वो तीनों फिर भी स्थूल है। तो ये दृष्टि तक अंदर की, बिल्कुल अंदर की भी बात नहीं, पिछले अनेक जन्मों की बात। वृत्ति में तो वो समावेश है ना, अनेक अनेक जन्मों की, आज से 63 जन्म पहले, जस्ट 21 जन्म के बाद का भी कोई है, या सतयुग का, कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, वृत्ति वो जागृत होती है। तो वो जब इतनी पुराने बात से लेकर दृष्टि तक आ गई, इस जन्म के दृष्टि तक, तो समझो वो यहां तक आ गई। इसके बाद फिर आगे हमारा स्थूल व्यवहार शुरू होता है, जिससे कि खजाने की जमा या लीकेज उस चीज से आंकी जाती है। तो एक ये इसके लिए, जैसा आपको बताया, मनन, चिंतन, मनन क्यों आवश्यक। जैसे खाना है, खाना खाते हैं, लेकिन अगर पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो वो खाना हजम नहीं होगा, उसकी शक्ति नहीं बनेगी, खून नहीं बनेगा, व्यक्ति कमजोर रहेगा। चाहे जितना भी खाना खा ले, बादाम खा ले, जितना भी स्ट्रेंथ खा ले, लेकिन पाचन शक्ति ही कमजोर है, कुछ फायदा नहीं। ऐसी आत्मा की पाचन शक्ति का नाम ही मनन शक्ति है। बस विचार साकर मंथन आत्मा की पाचन शक्ति है। बाबा तो बहुत अच्छा सुना रहा है, लेकिन आत्मा कितना उसको अंगीकार करती चली जा रही है, ये उस पर निर्भर है। एक ये है शक्ति। और इस चीज को अगर हम विषय देखें ना, आप देखो तो आज भी ब्रह्मा बाबा की, आज भी हम जो साकार मुरलियां सुनते हैं, कम से कम भी वो 6वीं 7वीं बार 8वीं बार रिवाइज हो रही होंगी। मोटे तौर पर इतनी बार वो मुरलियां सुनी है, लेकिन कोई भी मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें कोई ना कोई एकदम नई पॉइंट ना लगे। 8-8 बार रिवाइज हो गया, 50 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी लगता है अरे ये पॉइंट तो कभी सुनी नहीं, पहली बार ही सुन रहे हैं। तो इस कारण से क्यों? क्योंकि उन पॉइंट्स पर कभी भी विचार सागर मंथन नहीं किया। थोड़ा भी मंथन किया होता, गौर से सुनी हुई होती, हो सकता है वो पॉइंट इसलिए बुद्धि में नहीं आई कि जब पहले दो मुरली सुन रहे थे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार बुद्धि भाग गई हो गई। अक्सर होता है ना, बैठे हैं क्लास में, कोई काम होता है, कहीं बुद्धि भाग जाती है, वो पॉइंट ही निकल जाती है। इसीलिए बाबा बार बार ये मुरलियों को रिवीजन का चांस दे रहा है, क्योंकि इस आधार पर हमारा आगे का जीवन निर्धारित हो जाए। तो एक ये है साकार बाबा का भी ये देखा, देखो कैसे बाबा की मुरली चलती थी, बस बाबा का कितना मंथन चलता था एक एक पॉइंट के ऊपर, कितना मंथन, वो मंथन ही तो साकार मुरली है। शिव बाबा तो बीच बीच में आके दो तीन लाइन कुछ बोली, कोई पूरी की पूरी मुरली ही 100% शिव बाबा की हो ये बात नहीं होती है। साकार साकार दोनों बाप दादा की मुरली है। कभी फर्स्ट पर्सन में मुरली होती है शिव बाबा, मैं परमधाम निवासी हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, मैं अजन्मा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन ये शिव बाबा की। और जो बाकी मुरली का काफी है वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनुभव की बातें और बहुत बातें कि भाई ये राह चलते वहां मन फंसे, कोई भी बात होती है वो जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मा बाबा के मंथन, इसी कारण से ही ब्रह्मा बाबा एकदम और आगे चले गए। तो बाबा में हमने ये देखा, क्योंकि मैं बता रहा था ना अपना प्रैक्टिकल, और जितना जितना ये होता जाएगा अपना घोट तो नशा चढ़े जो बाबा कहते हैं, तो दूसरे का चिंतन का समय ही नहीं मिलेगा, बुद्धि ही नहीं चलेगी। बस वो ही बात बाबा की लास्ट मुरली में जो बाबा ने कहा, अंतिम मुरली 18 जनवरी की जो बाबा की चली है इसी बात पर चली है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा से, पूरी मुरली है। मैंने तो सम्मुख सुनी ना 18 जनवरी की मुरली। तो इस कारण से हमारा अभी टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन जैसे जितना करीब आता है तब विद्यार्थी कोई नई पढ़ाई शुरू नहीं करता, पुरानी पढ़ाई करी है उसी को रिवाइज करेगा, नोट्स बनाएगा, फिर रिवाइज करेगा, याद करेगा, लिख कर याद करेगा उन्हीं को। तो वो ही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि एग्जाम नियर आ रहा है तो इस रीति से हम पढ़ाई पढ़ें कि समय पर वो काम में आ जाए। नहीं तो होता क्या, पढ़ा हुआ होता है लास्ट समय पर उसे रिकलेक्ट नहीं होता तो पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाता है। भक्ति मार्ग में उदाहरण है, करण का उदाहरण है, उसको भी ये श्राप था कि समय पर तुम्हारी विद्या या शक्ति वो काम नहीं आएगी, क्योंकि उसे रिवाइज नहीं किया हुआ था। आवश्यकता एक ये है कि ब्रह्मा बाबा का हमने देखा, मुझे तो बाबा के साथ वैसे तो बहुत बार बाबा से मिले थे, लेकिन अंतिम बात मैं बताना चाहूंगा बाबा की, अंतिम दो दिन की बात, कि अंतिम दो दिन जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे कि बस बाबा को हम ये बताएंगे, ये पूछेंगे बाबा से, बस जाते थे हमेशा बाबा से पूछते थे, बाबा उत्तर देते थे। लेकिन अंतिम दो दिनों में देखा कि जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे बाबा से ये पूछेंगे, क्या होता था, नहीं बाबा को अक्षर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाबा यूं दृष्टि दी, बाबा कहता था बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, यानी बाबा प्रश्न भी बता देता था उसका समाधान भी दे देता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, दो दिन में 7 बार ऐसा हुआ। कभी हम जाते थे बाबा से पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, कभी सेवा की बात पूछने के लिए, कभी उसके अंदर अलग अलग जो बातें बाबा कहता है समान की बात तो उस रीति से पूछेंगे, ज्ञान की बात, लेकिन हर बार चेंज्ड उससे जाते थे, क्योंकि साइंस पढ़े हुए थे, इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे, तो टेक्निकल रीति से मन इजीली कोई बात को स्वीकार नहीं कर लेता है। लेकिन ये बात ऐसी देखी, गए बस बाबा ने मन की बात पढ़ी, उत्तर भी दे दिया और फिर बाबा जैसे अपने घोट तो नशा चढ़े उसमें व्यस्त हो जाता था। तो ये कौन सी स्थिति है, ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। दूसरे के मन का हाल बाबा इसलिए पढ़ लिया कर्मातीत अवस्था के निकट कि अपने मन को बाबा ने जीत लिया था, नहीं तो अपने मन को जिसने नहीं जीता होगा तो दूसरे के मन को भी थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा हमारा जो बायसिंग इफेक्ट होगा, जैसा हमारी उस व्यक्ति के प्रति विचारधारा है, जैसे उसकी भावना है, वो सब आ जाएंगी, वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, तो यथार्थ बात नहीं आएगी, वो मन जीते जगत जीत की स्थिति नहीं होगी। तो मन जीते जगत जीत, एक तो ये आवश्यक है, ये इस स्थिति में क्या होगा, जब जीत ही लिया ना, जहां जीत है वहां खुशी है, तो वहां लीकेज नहीं, कोई भी लीकेज नहीं। एक तो बाबा का ये देखा, और दूसरा क्या देखा, ऐसा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कि अंत में वो बात याद आती है। कौन सी बात? कोई अनफिनिश्ड टास्क होता है, हम सोच रहे ये करेंगे ये करेंगे, नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, तो बस अंत समय में। यहाँ कई बार क्या होता है, मधुबन में रहते हैं तो कोई भाई बहन ने शरीर छोड़ा, उसके परिवार वाले आते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं, तो जब संदेशी जाती है और वतन से समाचार लाती है, तो अक्सर करके ऐसा होता है, वो बताती है कि अरे वहां गए, बाबा ने भोग खिलाया, बहुत अच्छा उसको संतुष्ट किया, लेकिन वो बिचारी बहुत कई बार आत्मा बड़ा उदास थी, बाबा मैं ये चाहता था करना, ये विल लिख दूं, लेकिन सोचता रहा कल कर दूंगा कल कर दूंगा, वो नहीं लिख पाया, अभी तो बाबा वो तो सारा बच्चों के पास चला गया, या वो कोई भी मैं चाहते हुए भी यज्ञ का नहीं कर सका। बहुत बात ऐसी होती है, हम चाहते हैं लेकिन पोस्टपोन करने, कल कर लेंगे, ऐसा कल कल करते काल खा जाता है। तो एक आज यहां पर ये भी संकल्प लेके जाइएगा कि कोई भी अगर अनफिनिश्ड टास्क हो तो उसको बस पूरा कर दें। बाबा ने भी यही किया, यद्यपि बाबा ने सब तरफ से समेट लिया था, लेकिन बाबा के फिर भी चार पांच अनफिनिश्ड टास्क थे, और बाबा को आभास हो गया था, जब कर्मातीत अवस्था के निकट होती है आत्मा, आभास हो जाता है मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, तो बाबा ने अंतिम दिन में भी वो अनफिनिश्ड टास्क जो थे, अधूरे काम बाकी रह गए थे, वो पूरे किए। क्या काम थे हमने देखा, प्रातः क्लास योग के बाद बाबा यीशु दादी को बोला, बच्ची आज जितने भी पत्रों के जवाब लिखवाने हो लिखवा लो, कोई ऐसा न हो कि कोई पत्र का बिना जवाब दिए हुए पत्र रह जाए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था आज मेरा ये अंतिम दिन है। हम सबको भी आभास हो जाएगा, हम जितने कर्मातीत अवस्था के निकट के पास, अब बाबा मैं आया कि आया, तो वो अधूरा काम को पहले से ही हम पूरा करते चले। एक तो ये था, तो बाबा ने सारे पत्रों के जवाब लिखवा लिए। दूसरे काम, बाबा का देखा नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है ना, वो बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग ऐसा रही हुई बाकी थी, तो बाबा ने उसी दिन ही उसे फाइनल करा, जिससे कि वो अनफिनिश्ड टास्क ना रह जाए, क्योंकि फिर संकल्प रूपी खजाना वेस्ट जाएगा। जब आत्मा चली जाती है तो फिर उसके बाद भी, ऐसा कहा जाता है, उसके बहुत समय अगर जो चाहता था करना और नहीं कर सका, तो उसमें अगला जन्म तो होगा ही, उसमें आधार पे उसका बहुत समय वेस्ट चला जाएगा, शक्ति वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए वो समय संकल्प रूपी खजाना वेस्ट ना हो, तो अनफिनिश्ड टास्क में ना, ये एक बाबा ने भी उस दिन कहा कि ये बिल्डिंग को ले लो, और नहीं तो इतने दिन तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, तब हमारे यज्ञ में इतने साधन नहीं थे, इतना धन नहीं था कि बिल्डिंग ऐसे सहज रीति से खरीद सके कुछ भी, तो इसीलिए कई बार सोचना पड़ता था, तो वो सोच के फिर भी बाबा ने कहा यहां से बहुत सेवा होगी। वो तीसरी बात जो हुई, वो बाबा हमेशा रोज मुरली, तो रात को बाबा क्लास में चलती है रोज 8:45 बजे, जैसे ये क्लास हो रही है वैसे होती थी, लेकिन उस दिन बाबा ने 6:30 बजे ही भाई को बुला के कहा आज बाबा क्लास अभी 7 बजे कराएगा, सबको बोलो भोजन करके क्लास में आ जाए। तो भोजन करके खास, क्योंकि बाबा को मालूम था उसके बाद तो समय नहीं होगा और ऐसी स्थिति नहीं होगी कि सब भोजन कर सके, और इसलिए बाबा ने सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए। और उस दिन भी बाबा क्लास में आए, और क्लास में आके बाबा ने मुरली चलाई। अभी एक किताब भी निकली है, एक अव्यक्त संदेश नाम से ऐसा कुछ मोटी सी किताब है, तो उसमें ज्यादातर जो गुलजार दादी के थ्रू संदेश आए हैं यज्ञ में अभी तक, वो सारे संदेशों का संकलन है। हमें तो वैसे भी याद है क्योंकि मैं यहाँ पर था उस समय, तो जब बाबा ने अंतिम समय की बात है, उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी, नॉर्मल केस में बाबा को खांसी आती थी, कफ आता था, थोड़ी तबीयत भी ढीली थी एक दो दिन से, लेकिन रात्रि क्लास में बाबा को एक बार भी वो नहीं आई, और वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर, शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे विजय प्राप्त कर ली थी। हम सब भी जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे ना, तो हमारा भी यही स्थिति होगी। एक बार भी ऐसा नहीं। और बाबा क्लास के बाद ना, सब बच्चों को बस बाहर दरवाजे तक आए। बाबा का एक ब्यूटी थी, जैसे चलते हैं हम जाएंगे तो इधर या इधर मुंह करके जाएंगे, बाबा उतर के पीछे उल्टे जैसे कदमों से ना देखते हुए जाते थे दरवाजे तक। बस एक एक बच्चे को निहाल भी करते हुए, और बाबा कहते थे भाई मैं डबल, जो आप बच्चे जो हो डबल ताजधारी हो, विश्व के भी मालिक हो और परमधाम के भी। अब मैं तो सिर्फ परमधाम का मालिक हूँ शिव बाबा, मैं बच्चों को पीठ कैसे दिखाऊं। देखो कितने ऊंचे दृष्टिकोण से बाबा शिव बाबा हम बच्चों को देखता था। तो इस तरह बाबा वो करके दरवाजे पर खड़े होके बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। तो हमें भी कर्मातीत अवस्था के समय आभास हो जाएगा। ब्यूटी तो तभी है, अगर हम भी दुनिया वालों की तरह ही शरीर छोड़ दिया, अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, फ्लड आया, बिल्डिंग गिरी, या इन सब में किसी में भी गए, तो फिर दुनिया वाले और हम में फर्क ही क्या हुआ। तब अंत मते सो गति तो एकदम होगी नहीं, उस चारों तरफ चिल्लाना होगा, ऐसी स्थिति होगी। और हमारी भी अगर उसमें शरीर छूट गया कोई ब्यूटी नहीं। तो ब्यूटी तभी है जब हमें भीष्म पितामह की तरह, जैसा ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, हम भी उसी रीति से शरीर छोड़े, हाँ बाबा आपके पास आए कि आए। और फिर जब बाबा चले गए तो उसके बाद हाँ बच्चों ने बाबा से पूछा बाबा आपको अंत में कैसा अनुभव हो रहा था कर्मातीत अवस्था, क्योंकि जब कोई भी खजाने लीक नहीं होंगे और हमारे इतने सब खजाने शक्तियां सब जमा हो जाएंगी ना, तो वो ही जैसे कि हमारी अंतिम कर्मातीत अवस्था का हमें साक्षात्कार कराएंगी, अनुभव होगा। और बाबा ने यह भी कहा है, कई बार आपने सुना होगा कर्मातीत अवस्था हुई और तुरंत शरीर छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ? नहीं, कर्मातीत अवस्था हुई उसका कुछ घंटों तक, कुछ समय तक बच्चे अनुभव करे, तब उसके बाद शरीर छोड़े, तब तो उसका ब्यूटी है। और मुझे याद है जब ममा ने शरीर छोड़ा था, तो ममा ने जब शरीर छोड़ा तो जब ममा ऊपर गई, तब तो साकार बाबा यहीं थे, तो ममा ऊपर गए सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा बाबा के पास, तो शिव बाबा ने ममा से पूछा ममा आप क्या कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आए? तो ममा तो नॉर्मल केस में चुप ही रहते थे, लेकिन जब बाबा ने पूछा तो ममा ने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर रखा है हिस्ट्री हॉल में, और जाओ और शरीर में जाके अनुभव करो कि कर्मातीत अवस्था कैसी होती है। तो थोड़े समय के बाद बाबा ने मतलब ममा को भेजा, फिर ममा जब ऊपर गई तो बाबा ने पूछा बच्ची अनुभव किया? तो बाबा ने ममा ने कहा नहीं बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा जब मैं नीचे गई तो शरीर तो ठंडा हो गया था, और मैंने बहुत पुरुषार्थ किया शरीर में जाके, कुछ हलचल करे नैनों के द्वारा देखूं कोई, लेकिन शरीर में कोई चुरपुरी नहीं हुई, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं, तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं कर पाए। तो उस समय की बात है 65 वगैरह की, तब तो इतना ज्ञान की क्लैरिटी भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अब देखो कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया ना, अब जन्म लेकर के फिर ज्ञान लेकर के फिर उस अवस्था को प्राप्त करके तुम्हें कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा, और बिना उस अनुभव के आत्मा संपूर्ण होके तो जा नहीं सकती। घर में जब जाएगी तब तो पूरी पावन होनी चाहिए, और पूरी पावन तभी होगी जब कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके जाएगी। तो देखो ये कितना ज्ञान, ये जो मामा के या बाबा के लिए वो हम सबके लिए भी पूरा का पूरा वैलिड है। ये बात केवल मामा बाबा के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। तो इस तरीके से बाबा ने ना ये पूरा का पूरा, जैसे मामा की बात हुई और बाबा तो उस दिन ये कह करके, और मुझे याद है कि मैं सम्मुख बैठा हुआ था और जो बात आपको बताई कि कैसे मन की बात बाबा जान करके, तो जब बाबा अंदर गए कमरे में दादी जी के हाथ में हाथ देह त्याग किया बाबा ने, और उसके बाद बाबा का शरीर वो रखा रहा इतना देर तक, कितना 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 का दोपहर के बाद संस्कार किया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, और बस लगता था जैसे बाबा हमेशा की तरह उठ करके कहेंगे, हाथ फैला के जैसे बाबा कहते थे, बच्चे जाते थे, आओ बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, बिल्कुल गोरा कलर वैसा ही रहा, चमकता हुआ शरीर, कोई दुर्गंध नहीं। तो ये है शरीर का जैसे प्रकृति जीत की स्थिति। तो इसीलिए जितने खजाने हमारे जमा होते जाएंगे, वो प्रैक्टिकली हमें मन जीते जगत जीत और प्रकृति जीत की स्थिति, जो बाबा ने जानकी दादी को भी कहा। आपको मालूम है जानकी दादी की तबीयत 31 दिसंबर 1999 की बात है, 99 न्यू मिलेनियम शुरू हो रहा था, पूरी दुनिया में अजीब ही उत्साह था, तो लेकिन दादी लोटस में थी जानकी दादी, तबीयत दादी की बहुत खराब, डॉक्टर ने भी बोल दिया था भाई जिसको बुलाना हो बुला लो, और बहुत ही स्थिति खराब है। जयंती बहन भी वहां से लंदन से उधर आ गए थे, और तो यही बात दादी प्रकाशमणि जी ने, निर्वैर भाई ने, बाबा आए हुए थे नीचे शांतिवन में, अव्यक्त बाप दादा आते ही 31 दिसंबर को, तो बाबा को कही कि बाबा जानकी दादी की तबीयत तो वहां बहुत खराब है। तो बाबा ने सुना, कहा नहीं बच्चे, वो तो प्रकृति जीत आत्मा है, ठीक हो जाएगी, बस एक ही लाइन बोली। देखो आज 18 साल भी बीत गए और दादी की क्या वो है, अभी कहाँ कहाँ, और कल दादी फिर हैदराबाद जा रही है, अभी अभी जर्मनी लंदन होके आए, जितना तो यंग लोग भी वो नहीं करते उतना ये प्रकृति जीत। तो भाव क्या है कहने का, कि जितना खजानों का स्टॉक जमा किया हुआ होगा ना, तो उसका सतयुग में प्राप्ति होगी वो तो अलग, वो जिसने देखी, लेकिन यहां पर ही उसका हम शक्तियों का, गुणों का, उन खजानों का यहां पर ही हम अनुभव करें, वही तो ब्यूटी है, खजानों का तो यही अनुभव होगा। तो इसीलिए अभी आवश्यकता ये है। बहुत बहुत बहन जी का भी थैंक्स, आप सब लोगों का कि भाई दीदार हुआ, बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलके खुशी हुई, और ये तो समय ऐसा होता है कथा का, इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब।